खुदावंद के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद का शुक्र है कि कल मैंने अपनी टिकट खरीद ली है, इसलिए जल्द आप सबको रूबरू आने वाले 2 हफ्तों में देखूंगा। और फिर हम मिलकर खुदावंद के कलाम को, उसकी मोहब्बत को और एक दूसरे से उसके बारे में बातचीत करेंगे और बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचने का वसीला बनेंगे। शुक्रिया आप सबकी दुआओं के लिए। अपनी दुआओं में सारे सफ़र को याद रखें। पिछले 6.5 माह में खुदा ने यहाँ पर मुल्क अमरीका में कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और सारा जलाल वाहद यीशु मसीह के नाम को मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और खुदा सिर्फ ये चाहता है कि इंसान कहे कि खुदावंद खुदा मैं हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। तो आप सबकी दुआओं के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और जो हर सुबह अपने दिन का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में सबसे मुबारक लोग हैं। सबसे अंभीर रूहानी तौर पर खुदा के प्यारे लोग। सो खुदावंद आपको बरकत दे। सो आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और आज उसकी दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए उसका शुक्र करें, इससे पहले कि उसके कलाम में से सीखें, खुदावन की हिकमत और दनाई मांगेंगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आए हुई तमाम बहनों के लिए, माओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदावन खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदावन तूने अपने कलाम में कहा है कि आने वाली पीढ़ी तेरी खबर उस नस्ल को सुनाएगी जो मुस्तकबिल का मुस्तकबिल है। तो खुदा बाप, तमाम बच्चों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो अभी से तेरे कलाम की रोटी से, तेरे कलाम की रूहानी खुराक से सेर हो रहे हैं, ताकि मजबूत दरख्त बने, फलदार पौधे बने। सो आए हुई तमाम कलीसिया के लिए खुदावन तेरा शुक्रगुजार हूँ। जितने नहीं आ चुके खुदावन खुदा आ सके, उन सबको बेदार कर, ताकि अपनी ज़िंदगी में नींद या दुनिया की फिक्र को नहीं बल्कि तुझसे मोहब्बत करना सीखें। और तेरी मोहब्बत इसी से जाहिर होती है कि हम तेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो नए अहदनामे से मेरे साथ निकालें इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी आज हम 19वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ेंगे और 20वीं आयत को मुकम्मल करेंगे। जैसे मैंने अपने पिछ आपको पिछले दिनों में कहा कि आज हम यीशु मसीह के नाम के बारे में जानेंगे कि यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है और उसके कितने नाम बाइबल मुकद्दस में है। अगर आप अपनी पेंसिल या कॉपी पेंसिल लेकर आए तो ज़रूर लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं, आपको हवाला जात दे दूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ सकें कि ये बाइबल में से है। सो इफिसियों 2 बाब उसकी 19वीं आयत में पालूस रसूल जब वो कैद में था, जब वो मुसीबत में था, जब वो परेशानी में था, जब वो उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी उन रूमी सोल्जरों यानी के सिपाहियों के साथ, और वो उस कैद खाना में से ये खत इफिसस के रहने वाले उन ईमानदारों को लिखता है और कहता है, पास अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। 20वीं आयत, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसु है तामीर किए गए हो, उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसी में बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमने पिछले दिनों में देखा रसूलों और नबियों के बारे में, यानी कि वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह के मुकरर किए हुए उसका पैगाम देते हैं। फिर हमने देखा कि कोने के सिरे का पत्थर, वो बुनियाद कौन है? खुदावन यीशु मसीह है, जिन जिस पर नबियों की क्या रखी गई है, बुनियाद रखी गई है, यानी कि जिस पैगाम पर वो कायम है। हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह ही वो न्यू वो बुनियाद है और कोई दूसरा और बुनियाद नहीं रख सकता। और हमने बाइबल में से बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात देखे थे, जैसा पहला करंथियों 3 बाप उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत में पालूस कहता है कि मैंने जो बुनियाद रखी है वो मेरी अपनी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। और आपको याद होगा कि मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने खुद कहा था, लोगों से बात करते हुए, लोगों से कलाम करते हुए, उनको सिखाते हुए, उस बड़ी भीड़ को, एक अक्लमंद शख्स के बारे में और एक बेवकूफ शख्स के बारे में। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें कही थी कि जो कोई मेरी बातें, जो मेरा कलाम आज सुन रहा है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह को चट्टान भी कहा गया है। चट्टान यानी कि ऐसी मजबूत चट्टान जिसे कोई जंजला हिला नहीं सकता, जिसे कोई तूफान तोड़ नहीं सकता, जिसे किसी बारिश से, किसी सैलाब से नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो वहां पर यीशु मसीह फरमाते हैं, कहते हैं कि अकलमंद वो आदमी है, यानी कि समझदार, हिकमत वाला वो आदमी, वो औरत, वो बच्चा, वो बेटा, वो कोई भी कबीला, कोई भी नस्ल, कोई भी है, किसी भी मजहब से है, अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो उसने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर। और ये खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो आपको याद होगा कि बियाबान में जब बनी इसराइल कौम खुदा पर बुड़बुड़ा रही थी, यानी कि शिकायत कर रही थी, यानी कि खुदा को, खुदा के बंदा नबी मूसा को कह रहे थे कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए बियाबान में ले आया, तो वहाँ पर वो रोते धोते हुए छोटे बच्चों की तरह, जैसे बहुत दफ़ा छोटे बच्चे करते हैं ना, आपको याद होगा, आप जो माँ बाप हैं आप रोज़ ये देखते हैं, जब आपके बच्चों को अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती तो वो रोना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं, बहुत दफ़ा हाथ और अपनी जबान भी चलाते हैं, और उनका मुंह, उनका चेहरा देखने वाला होता है कि जब उनकी पसंदीदा कोई चीज़ उनके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलती। तो ऐसी ही तस्वीर बियाबान में नज़र आती है कि वो बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, खुदा पर, खुदा के नबी पर ताने मार रहे हैं कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया, प्यासा, हम प्यासे ही मर जाएंगे और हमारी कब्रें यहाँ पर ही बन जाएंगी। तो ये सब बातें कहने का, कलाम का हिस्सा याद दिलाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा, अकलमंद वो आदमी है जो चट्टान पर घर बनाता है, ये चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि जब इस चट्टान पर कोई अपना घर बना लेता है तो वो महफूज है, महफूज है हर तरह की बारिश से, हर तरह की पानी के चढ़ जाने से, आंधी तूफान से, उसे कितनी भी टक्करें लगें उसकी बुनियाद ना गिरेगी, क्योंकि उसका घर क्या बनाया गया है? चट्टान पर। उसकी बुनियाद किस पर डाली गई है? चट्टान पर। सादा सी बात है, अगर आप में से कोई घर बनाना चाहता है तो अगर वो रेत पर घर बनाए तो क्या होगा? बारिश आएगी और बारिश की वजह से उसकी बुनियाद गिर जाएगी और वो मकान और वो घर क्या होगा? टूट जाएगा, उसकी छत गिर जाएगी, उसकी दीवारें बैठ जाएंगी, जैसे बहुत दफा कहते हैं जब किसी की नींव बैठ जाती है, जिसे नी हम कहते हैं उर्दू में, उसे न्यू कहते हैं, यानी कि बुनियाद बैठ जाती है किसी घर की, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसके नीचे जो बुनियाद थी वो कमजोर थी, इसलिए उसकी न्यू क्या हुई? बैठ गई। तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी नहीं गिरेगा, वो अबद तक कायम रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह के आज बहुत से नामों के बारे में हम जानेंगे, एक हवाला मेरे साथ देखें, नए अहदनामा में से पहला करंथियों 10 बाप उसकी हम देखेंगे तीन आय से। जब हम पहली आय से पढ़ते हैं तो यहाँ पर पालूस रसूल उन ईमानदारों के बारे में बात करता है जो शिकायतें करते हैं, छोटे बच्चों की तरह बुड़बुड़ाते, हाथ पांव मारते थे कि खुदा हमें यहाँ पर मारने के लिए, भूखा छोड़ देने के लिए, तबाह होने के लिए बियाबान में ले आया। हम तो फरौन के घर में अच्छे थे, वहां पर हम खीरे खाते थे, वहां पर हम तरबूज खाते थे, वहां पर हम भुना हुआ गोश्त खाते थे, वहां का गंडा और लहसुन हमें याद आता है। तो पालूस रसूल पहला करंथियों उसके पहले 10वें बाब में ये बातें उनको लिखते हुए 3री आयत में कहता है कि उन लोगों ने क्या किया, सबने एक ही रूहानी खुराक खाई। ये खुराक कौन थी? आसमानी खुराक। आपको याद होगा आतवार के पैगाम में वो लोग यीशु मसीह के पीछे थे, वो जिस्मानी खुराक ढूंढ रहे थे, रूहानी खुराक नहीं। और चौथी आयत में लिखा है सबने एक ही रूहानी पिया पानी पिया। ये रूहानी पानी कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसमें से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। तो यीशु मसीह को जिंदगी का पानी भी कहा गया है। और फिर क्या लिखा है, एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान से पीते थे, उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान यीशु मसीह है। वो चट्टान कौन है? मसीह है। चट्टान से मुराद यानी कि यीशु मसीह की मजबूतियत को, यीशु मसीह में महफूजियत को, यीशु मसीह में हफाजत को बयान करती है कि वो ऐसी चट्टान है जो रूहानी पानी देती है, बियाबान में चलने वाली चट्टान। पालूस रसूल यही बातें बताना चाहता है इफिसस की कलीसिया को कि नबियों और रसूलों की जो बुनियाद है, जिस पर उन्होंने अपने मकान अपनी जिंदगियों को कायम किया है, उसे क्या कहा गया है? कोने के सिरे का पत्थर। ये भी यीशु मसीह का नाम है पुराने अहदनामा में। जब हम जबूर 122 को देखते हैं पुराने अहदनामा में, यशाया की किताब में जब देखते हैं तो वहां पर भी कहा गया है कि जिस पत्थर को, जिस कोने के सिरे के पत्थर को ममारों ने, यानी कि उन लोगों ने जो अपने आप को समझदार समझते थे, जो इस बात की तरफ इशारा है, यानी कि फकी और फरीसी और रबी और यहूदी रहनुमा जो अपने आप को ममार समझते थे, काबिल समझते थे, समझदार समझते थे, उन ममारों ने उस कोने के सिरे को पत्थर, उस कोने के सिरे के पत्थर को यानी कि यीशु मसीह को रद्द किया। यहूदियों ने यीशु मसीह को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, उसे कबूल नहीं किया। और हालांकि जब वो पिलातूस के सामने खड़े थे तो उन्होंने कहा, क्या कहा? कि हमें बराबा दे, हमें बराबा दे, बराबा को छोड़ दे और यीशु को मसलूब कर। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि कोने के सिरे के पत्थर को, यीशु मसीह का नाम कोने के सिरे का पत्थर भी कहा गया है। और क्या लिखा है? पौलुस कहता है जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, यीशु का मतलब है निजात देने वाला। तो आज मेरे साथ चंद एक नाम लिखें, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपके साथ मैं हवाला जात बयान करूंगा, अगर नहीं तो आप गौर से सुने। हमने अभी तक 5-6 नाम देखे। यीशु मसीह को चट्टान कहा गया है, मत्ती की इंजील के मुताबिक यीशु मसीह को जिंदगी की रोटी कहा गया है, यूहन्ना 6 बाप उसकी 36वीं आयत के मुताबिक, 35वीं आयत के मुताबिक, और फिर हमने देखा यीशु मसीह को चट्टान कहा गया है यानी कि रूहानी पानी देने वाली चट्टान। और फिर यूहन्ना की इंजील के मुताबिक 4 बाब में क्या लिखा है, उस सामरी औरत से यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ, यीशु मसीह को जिंदगी का पानी भी कहा गया है। और फिर यहाँ पर पालूस रसूल से कोने के सिरे का पत्थर कहता है इफिसियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत में। फिर पालूस रसूल पहला करंथियों 3 बाप उसकी 10वीं और 11वीं आयत में उसे क्या कहता है? बुनियाद कहता है, यानी कि वो बुनियाद जिस पर क्या रखा गया है? हर एक ईमानदार कायम किया गया है। आपको जब मैं आऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि कोने के सिरे का पत्थर कैसा होता है। मेरे पास वो तस्वीरें अभी आप तक आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जब आऊंगा याद कराएं ताकि मैं आपको बताऊं दिखाऊं कि कोने का सिरा का पत्थर कैसे पुराने अहदनामे में और तारीखी दौर में वो कोने के सिरे के पत्थर को इस्तेमाल करते थे जो पूरे मकान को पूरी बिल्डिंग को संभालता था। तो मेरे साथ चंद एक नाम लिखें। यसुमसी के नए अहदनामा में पुराने अहदनामा में कम से कम 200-300 से ज्यादा नाम हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ चंद एक नाम शेयर करूंगा। यसुमसी को आसमानी रोटी कहा गया है, यहन्ना छठा बाप उसकी 32वीं आयत के मुताबिक। यसुमसी को आमीन कहा गया है, आमीन का मतलब हक यानी के सच। मकाशफा 3 बाप उसकी 14 आयत के मुताबिक। यसुमसी को इब्ने आदम कहा गया है यानी के दाऊद की नस्ल से। मत्ती 16 बाप उसकी 13 आयत के मुताबिक। यसुमसी को इब्ने दाऊद कहा गया है, इब्ने दाऊद यानी के वो दाऊद की अपने तख्त पर बैठेगा। बा मुताबक मत्ती 9 बाप उसकी 27वीं आयत। यसुमसी को अच्छा चरवाहा क्या कहा गया है, वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और हर तरह के खतरे को मोल लेकर उनको बचाता है। यूहन्ना 10 बाप उसकी 14 आयत। यसुमसी को अजली बादशाह कहा गया है, इस दुनिया के बादशाह, इस दुनिया की हुकूमत आरजी है। कई मुल्कों में 4 साल तक हुकूमत होती है, कई मुल्कों में 5 साल और कई मुल्कों में लगातार बादशाही होती है, लेकिन वो जमीनी है। यहाँ पर यसुमसी को अजली बादशाह कहा गया है। पहला तमोथियस 1 बाप उसकी 17 आयत के मुताबिक यानी के अब तक रहने वाला। इख्तियारे आलम यानी के कुल इख्तियार रखने वाला बादशाह। फिर यसुमसी को उस्ताद कहा गया है यानी के सुखाने वाला, तालीम देने वाला। यूहन्ना की इंजील 13 बाप उसकी 13वीं आयत में। फिर यसुमसी को इसराइल का बादशाह कहा गया है। पहला यूहन्ना की इंजील 1 बाप उसकी 49 आयत। फिर यसुमसी को इसराइल की तसल्ली कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसराइल कौम तसल्ली का इत्मीनान कर रही थी जब वो जंगो जदल में से गुजर रहे थे, तो यसुमसी को ये लकब, ये नाम, ये ओहदा दिया गया है कि वो इसराइल की तसल्ली है, इत्मीनान है जंग और जदल में। ये हवाला आपको मिलेगा लूका 2 बाप उसकी 25वीं आयत। फिर यसुमसी को अल्फा और अमेगा कहा गया है। अल्फा का मतलब इब्तदा, अमेगा का मतलब यानी के आखिर, यानी के शुरू से लेकर आखिर तक। ये यसुमसी का जो नाम है, मकाशवा 21वां बाप उसकी 6 आयत के मुताबिक कि उसे इब्तदा और इंतहा कहा गया है, ये भी यसुमसी का नाम है। कुलसियों 1 बाप उसकी 15 आयत में यसुमसी को कहा गया है, अनदेखे खुदा की सूरत पर यानी कि वो खुदा जिसे कभी किसी इंसान ने नहीं देखा, वो खुदा जो जलाली है, वो खुदा जो पाक है, वो खुदा जो बोलता है, वो खुदा जो कलाम करता है, वो खुदा जो अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, उसे क्या कहा गया है यसुमसी को? अनदेखे खुदा की सूरत पर, अनदेखे खुदा का रूप खुदा कहा गया है। कुलसियों 1 बाप उसकी 15 आयत में। फिर यसुमसी को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा गया है। दरख्त इस बात की तस्वीर है कि हर तरह की जिंदगी जो शाखों को मिलती है, हर तरह का फल और हर तरह की कुव्वत और बर्दाश्त करने की जो जड़ है, जो दरख्त है, वो यसुमसी है। फिर यसुमसी को बादशाहों का बादशाह, यसुमसी को बड़ा चरवाहा और यसुमसी को पोशीदा मन भी कहा गया है। तो इन चंद एक नामों को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो अनमोल है, वो चलता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो बोलता है, वो आपके दुखों को समझता है, वो आपकी मुश्किलों में आपके काम आता है, वो जब तूफान होते हैं तो आपको तूफानों में से निकालने की राह निकालता है, जब आप भूखे होते हैं तो वो आसमान से अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाता है, जब आप बीमार होते हैं तो वो आपकी बीमारियों में तंदुरुस्ती देने की कुदरत रखता है और कैदखानों में से रिहाई देने की भी कुव्वत रखता है। आप अपनी जिंदगी के किसी भी मुश्किल हालात में उस खुदा को पुकार सकते हैं, वो आपके करीब है। जैसे बहुत दफा लोग कहते हैं कि खुदा इतना करीब है कि जितने हमारी शारर, यानी कि जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जो सांस आप लेते हैं, ये भी खुदा यीशु मसीह का नाम है, उसे जिंदगी का दम कहा गया है पदेश की किताब के मुताबिक। जिंदगी का दम, आपको याद होगा कि आदम और हवा के नथनों में खुदावन खुदा ने जिंदगी का दम फूका, ये भी खुदावन यीशु मसीह का नाम है, जिंदगी का मालक, जिंदगी का दम। तो आज इस लम्हा आप सबके लिए यही सलाह, यही नसीहत है कि अपने खुदा को कभी भी धोखा ना दें, अपने खुदा की कभी भी बंदगी करना ना छोड़ें। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से, तेरे नामों के वसीला से, तेरे करदार के वसीला से, तेरी वफादारी के वसीला से, तेरे वादों से, क्योंकि तू जिंदा है और तू इंसान नहीं कि झूठ बोले, तू वफादार खुदा है और अपने लोगों को बरकत देता है। आज हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इस पैगाम को दूसरों तक लेकर जाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।